परम पूज्य लोकनाथ महाराज की दिव्य मधुर कीर्तन हजारों प्रवचनों को सुनने से भी ज्यादा लाभान्वित है, क्योंकि ये गीत के द्वारा कीर्तन के द्वारा भगवान की गुणगान जो होता है वो सिर्फ बुद्धि को स्पर्श नहीं करता है लेकिन हृदय को भी स्पर्श करता हो, आत्मा को जगाने वाली चीज है। तो महाराज जी जब पुणे में आते थे हमारे प्रवचन के पहले महाराज जी जैसे लगभग अभी आधा घंटा एक घंटा कीर्तन करते थे, तो जिस तरह ये एक दावाग्नि को मिटाने वाली बारिश बरसात होता है, ये कीर्तन उसके बराबर है। क्योंकि इस दुनिया में सब जीव तड़प रहे हैं त्रिविध ताप से, जन्म मृत्यु से, लेकिन ये कीर्तन को श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, भक्ति के साथ जो भक्त दोहराएगा और इस कीर्तन में भाग लेगा जरूर उसको इसका लाभ होता है। हमने ऐसे एक श्लोक सुना है अजामिल के प्रसंग में कि ये बताते हैं, नामोच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत पुत्रकाः अजामिले पितैनैव मृत्युपाशादमुच्यत। ये यमराज अपने यमदूतों को बताते हैं कि ये यम किं करो, देखो ये अजामिल जैसे पापी से महापापी वो भगवान के नामों का उच्चारण करके ये मृत्युपाश से आप लोगों से बच गया, ऐसे बताते हैं यमदूतों को, क्योंकि वो भगवान के नामों को पुकारा उसने। तो महाराज जी कीर्तन भी बढ़िया करते हैं और साथ में बहुत मधुर कथा भी करते हैं। तो महाराज जी के मुखारविंदों से हमने बहुत बार कृष्ण लीला कथाएं सुनी हैं, जिसको सुनने से हमको कृष्ण लीला में भी थोड़ा रुचि जागृत हुई। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से सब जब सुन रहे थे, तभी जब दशम स्कंद में आ पहुंचे सुखदेव गोस्वामी, तभी परीक्षित महाराज को ऐसे एक अद्भुत अनुभव प्राप्त हुआ। येनावतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्ण रम्याणि मनोज्ञानी चनः प्रभो। हे भगवान, इतने स्कंदों में आपने वामन अवतार, नरसिंह अवतार, ऐसे विविध अवतारों के बारे में आपने बताया हमको, लेकिन अभी जो बता रहे हैं कृष्ण के बाल्य लीलाओं के संबंध में, इसको सुनकर इस मधुरिमा में हमारे मन डूब गया है और हमको लग रहा है कि आप इन्हीं लीलाओं को और बताइए विस्तृत रूप से, इस तरह वो विनती करते हैं। तो उसमें एक छोटे संक्षिप्त रूप में एक लीला को हम आज बताएंगे आपको। ये कृष्ण इस इधर भौतिक लोक में अवतरित होकर 3 महीना हो गया था, तो 3 महीने की बात है। देखिए 3 महीने में कृष्ण ऐसे बच्चे हो गए थे जो ऐसे जमीन में लोट पोट कर जमीन में वो तैरने लगे। जैसे आप देखेंगे छोटा बच्चा जो होता है 3 महीने में ऐसे बाजू में ऐसे लेटता है, उसके बाद जमीन में ऐसे अपने पेट को जमीन में डालकर ऐसे वो तैरना शुरू होता है, उसका रेंगता है वो तो वो रेंगना करवट बदलना बोलते हैं उसको। तो वो ऐसे जब रेंगना शुरू किया उसको सब गोपियों ने देखा, सब गोपियां बहुत जोर से कृष्ण की गुणगान करने लगी, बहुत आनंद में डूब गई। तो यशोदा को बोला उन्होंने, यशोदे ये समय है आज हमें एक उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि पहली बार हमने इस तरह कृष्ण को इस अद्भुत रूप में देखा, वो जमीन में रेंग रहे हैं ऐसे। तो उसको उत्थान बोलते हैं, उसको उत्थान नाम से पुकारा जाता है। वैदिक संस्कृति में छोटे छोटे चीजों के लिए भी संस्कार मनाया जाता है। जैसे आपको मालूम है संस्कार शुरू होते हैं जन्म के पहले, बच्चे के जन्म के पहले, उसको बोलते हैं गर्भाधान संस्कार ऐसे। और एक व्यक्ति का मृत्यु होने के बाद भी और एक संस्कार है, उसका नाम है अंत्येष्टि बोलते हैं उसको। जन्म के पहले मृत्यु के बाद भी संस्कार साथ में चलता है जीव के साथ, ऐसे 40 संस्कार हैं ऐसे। तो वैदिक संस्कृति में आपने सुना होगा, जैसे मुंडन का संस्कार है, नामकरण का संस्कार है, अन्नप्राशन का संस्कार है, जब एक स्त्री गर्भवती होती है 7 महीने में भी एक और एक संस्कार होता है ऐसे। तो इस तरह के अनेक संस्कार हैं। ये संस्कार जब दिया जाता है बच्चे को, उस अवस्था में आप देखेंगे उस उत्सव में भाग लेने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं। जैसे हमारे पूना मंदिर में एक बार किसी व्यक्ति ने ऐसे मुंडन संस्कार मनाया था उनके बच्चे के लिए, तो ऐसे 200-300 लोग आ गए मंदिर में। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बुलाया था, आ गए तो मंदिर में उनको प्रवचन भी प्राप्त हो गया, प्रसाद प्राप्त हुआ, कीर्तन प्राप्त हुआ, दर्शन भी प्राप्त हुआ, कुछ प्रभुपाद की किताब भी बंटवारा किया हमने उनको, सब लेकर गए सब लोग, हम बहुत खुश हो गए। तो हमारे एक भक्त बता रहे थे कि ये लोगों को बुलाएंगे तो ये लोग कभी मंदिर में नहीं आएंगे, लेकिन ये संस्कार के वजह से आ गए सर। क्योंकि किसी संस्कार होता है घर में, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है तो उनको आना ही पड़ता है, क्योंकि वो उनको उनके लिए इन्विटेशन छाप कर भेजते हैं, लोग आ जाते हैं इस तरह। तो इस तरह संस्कार जब होता है लोग आते हैं साथ में, वो तो साल में एक बार दो बार ऐसे लोग आते हैं, लेकिन वैदिक संस्कृति में ऐसे संस्कार देते समय साथ साथ दिव्य ज्ञान कीर्तन ये सब दिया जाता है साथ में उसके। जैसे शादी होता है वो भी विवाह यज्ञ है, उसमें भी लोग आते हैं। इस तरह वैदिक संस्कृति में धीरे 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 इंस्टॉलमेंट में लोगों को स्वीकृति दिया जाता है, और एक दिन ऐसे स्वीकृति पक्को हो जाएगा तभी भक्ति जागृत हो जाएगा लोगों को ऐसे, इसलिए संस्कार ऐसे मनाए जाते हैं ऐसे। तो यशोदा भी मनाने वाली थी, जाकर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मण आ गए और ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्रों को उच्चारण करने लगे, स्वस्ति वचन बच्चे के लिए, और बैंड बज रहा था, कीर्तन हो रहा था और धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा था ऐसे, और तोरण वगैरह लगाया था सब। तो यशोदा सोच रही थी कि ये तो कृष्ण इतना नन्ना मुन्ना छोटा बालक है, ये साथ में रहेगा, मैं सेवा कैसे कर पाऊंगी, इतने मेहमान आए हैं हमारे यहाँ तो सबको स्वागत करना है, सबके लिए टाइम देना है। तो उन्होंने क्या किया, बच्चे को साथ में लेकर एक बैलगाड़ी के नीचे ये कटिया था, छोटी कटिया था वो, तो उधर जाकर वो भी खुद भी लेट गई, कृष्ण को भी लेट दिया उधर, और अपने साड़ी से उनको ऐसे जब आलिंगन दे रही थी साड़ी को लेकर, तो कृष्ण को लगा कि माता आजू बाजू में पूरा मुझे घेर कर ऐसे आलिंगन दे रही है, साथ में सो रही है, तो उनके आलिंगन में भगवान ऐसे सो गए बहुत अच्छी तरह। तो सोने के बाद धीरे से यशोदा उठ गई, अभी उन्होंने सोचा कि कृष्ण तो सो गए, अभी मेरा सब घर की काम कर पाऊंगी, इतना सोचकर वो निकल गई उधर से। तो यशोदा के अनेक सहेलियां सखियां आई थी उधर, तो उनको कुमकुम देना, चंदन देना। अभी भारत के संस्कृति में आप देखेंगे, जैसे हम दक्षिण भारत से आते हैं, दक्षिण भारत में एक ऐसे एक उत्सव मनाते हैं नवंबर दिसंबर महीने में, उधर ऐसे सीढ़ी में अलग अलग डायरमा रखते हैं, जैसे सबसे नीचे होता है जैसे सैनिक पुलिसमैन वगैरह रखते हैं, उसके ऊपर रखते हैं जैसे देवी देवताओं का, उसके ऊपर रखते हैं दशावतार, और उसके ऊपर जैसे कृष्ण के वृंदावन लीला ऐसा करते हैं, तो ऊपर कृष्ण मुरली बजाते हुए ऐसे रखते हैं। तो इस तरह लोग अलग अलग घर में अपने अपने डायरमा ले मार्केट में जाकर लेके आकर अलंकार करते हैं, दूसरों को बुलाते हैं अपने घर में। तो हम जब छोटे बच्चे थे हम जाते थे माता के साथ, तो सब लोग अपने घर में लोगों को दिखाकर समझ आते थे क्या क्या गुड़िया बोलते हैं उसको, गुड़िया लाए हैं, क्या क्या अलंकार किया है समझ आते थे। तो हम कुछ कीर्तन भी करते थे, उसके बाद जाते समय वो माताएं दूसरी माताओं को ब्लाउज पीस देती थी और कुमकुम चंदन देती थी ऐसे, और बच्चे भी सोचते थे हमारे लिए क्या दिया जाएगा, तो उनके लिए खाने के लिए प्रसाद दिया जाता था कुछ, तो प्रसाद लेकर वो जाते थे ऐसे। तो इस तरह भारत की संस्कृति में हम विविध उत्सव मनाते हैं, और उत्सव के द्वारा हम भगवान को निकट पहुँचते हैं। तो इस तरह यशोदा भी अपने सखियों को भी कुमकुम चंदन सब दे रही थी। इतने में कृष्ण जग गए तो जोर जोर से आवाज करने लगे, लेकिन उनके आवाज को कोई भी सुन नहीं पाए, क्योंकि सब लोग अपने अपने दुनिया में थे। सब लोग कोई कोई बैंड बजा रहे हैं, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई सखियां सब इधर उधर भाग रही हैं, सेवा चल रहा है, ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्रण उच्चारण कर रहे हैं, तो कोई सुन नहीं रहे थे। तो कृष्ण ने सोचा कि अभी कोई सुनने वाले नहीं है, अभी सब लोगों की आकर्षण मेरे ऊपर आने के लिए मैं तो कुछ करूँगा। इस तरह सोचकर अपने नन्हे मुन्ने बच्चे के जो पांव जो होता है, देख सकते हैं कैसे एक मुलायम रोस नहीं तो कमल के बराबर होता है। आपने देखा होगा बच्चे का कितना मुलायम होता है उसके पांव। उसको उठाकर भगवान ने उस बैलगाड़ी के नीचे के पोर्शन को ऐसे छुया उन्होंने। आप पूछ सकते हो कि भगवान तो इतने छोटे थे, नीचे लेटे थे, उनका पांव इतना बड़ा कैसे हो गया? तो ऐसे ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है कि उस बैलगाड़ी के अंदर एक असुर घुस गया था, उसका नाम था शकटासुर। तो असुर की बार के कारण ऐसे वो बैलगाड़ी के दोनों पहिए जो है नीचे 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 भूमि के अंदर जाने लगे, आधा पहिया जला गया, चला गया अंदर, इसलिए वो बैलगाड़ी भी नीचे आ गया ऐसे। इसलिए भगवान अपने पांव उठाया, आसानी से छू पाए वो भगवान ऐसे। तो भगवान ऐसे छूया, तुरंत अगला क्षण क्या हुआ, दोनों पहिए दो दिशा में ऐसे उड़कर नीचे गिर गए और पूरा बैल का गाड़ी जो है उछल कर नीचे गिर गया उस बाजू में। उसके ऊपर बड़े बड़े बर्तन थे, सब नीचे गिर गए। बड़ा आवाज हो गया, हलचल मच गया, सब गोपगण, सब गोपियां, सब भाग कर आ गई यह अद्भुत कार्य को देखने के लिए। तो पूरा घेर लिया उन्होंने कृष्ण को, और सब बच्चे छोटे 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 बच्चे थे, उनको पूछा कि क्या हो गया, क्या हो गया इसे? तो बच्चे बोले कि कृष्ण ने अपने पांव उठाकर छुया, बस उतना ही हमने देखा, अगले क्षण इतना बड़ा घटना घट गया। तो माताएं सोची ये छोटे बच्चे छोटे हैं, उनकी बुद्धि भी छोटा है, क्या समझ पाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक छोटा कृष्ण बच्चा ने ऐसे छुया उसको ऐसे हो गया, पता नहीं था उनको। देखिए जब कृष्ण पांव उठाया, वामन देव जैसे उनको अपने आकार को बड़ा नहीं करना पड़ा, वामन देव तीन पहिए मांग कर कितना बड़ा आकार को प्रकट किया आपको मालूम है, कैसे वो ब्रह्मांड को भेद करके गंगा जल को लाया उन्होंने ऐसे। लेकिन कृष्ण बहुत आसानी से अपने पांव को पांव से छूने से उन्होंने शकटासुर को भी मार दिया, और आसानी से पूरे बैलगाड़ी को भी छिन्ना भिन्ना कर दिया उन्होंने ऐसे। तो इतने में सब गोपियां गोपगण जब देख रहे थे कृष्ण की ओर, कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि यही उनको चाहिए था।